दोस्तों आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के रहने वाले लेखक हारून खालिद, जिन्होंने इन सर्च ऑफ शिवा, वॉकिंग विद नानक और अ वाइट ट्रेल जैसी किताबें लिखी हैं। लेकिन सिर्फ यही उनका तारुफ नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप उनको पढ़ते जाएंगे, आपको लगेगा कि हारून एक सूफी है जो नानक के साथ घूमता है, या फिर एक फकीर है जो पाकिस्तान की गलियों में शिव को खोजता फिरता है, या फिर एक लड़ाका है जो उन लोगों के लिए बोलता है जिनकी आवाज कमजोर है। हारून, स्वागत है आपका SBS हिंदी की महफिल में। बताइए, आप इनमें से किस तारुफ को अपने सबसे करीब पाते हैं?
जी, आपने तो इतना बड़ा तारुफ कर दिया, मैं तो इनमें से किसी को भी अपने करीब नहीं इस तरह डिस्क्राइब कर सकता। बस ये एक सर्च है पाकिस्तान की तारीख की, पाकिस्तान में नहीं कहूँगा, इस लैंड की तारीख की, इस एरिया की तारीख की, जो पाकिस्तान से पहले भी था, जिसकी एक हजारों साल पुरानी एक रवायत है, और जिसकी जगह अब इस अभी भी इस लैंड में है, क्योंकि ये इस जगह की इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं, हमारी हिस्ट्री है, सो हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना एक्सप्लोर नहीं होता, इसलिए शायद मेरा काम इतना नजर आ रहा है आपको, अदरवाइज काम तो इतना खास नहीं।
आप विनम्र हो रहे हैं, जैसा कि हिंदी में कहा जाता है कि आप अपने आप को बहुत कम करके आंक रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि खास तौर पर हम जो भारतीय लोग हैं, हम जो भारत में जन्मे हैं, बस इसलिए भारतीय हैं, वो जमीन के उस हिस्से को जिसको पाकिस्तान कहा जाता है पिछले 60-70 साल से, उसे बहुत कम जानते हैं, और उसके बारे में हम लोगों ने अपने दिमाग में एक खांचा बना रखा है कि पाकिस्तान ऐसा है। उस खांचे के बारे में भी मैं सवाल बाद में करूंगा आपसे, लेकिन पहले मेरा सवाल आपके बारे में है कि ऐसा कब होता है और क्यों होता है कि पाकिस्तान का एक लड़का जो एक सुन्नी मुसलमान है और अपनी इस पहचान को छिपाता नहीं है, अपनी इस पहचान को लेकर उसके अंदर कोई गिल्ट नहीं है, वो सुन्नी मुसलमान पाकिस्तानी लड़का कब पाकिस्तान में शिव को खोजने निकल चलता है?
जी, आई थिंक शायद मेरी एक ब्लेसिंग है, अगर मैं सुन्नी मुसलमान ना होता तो शायद मैं ये काम इतने आराम से ना कर सकता, क्योंकि आप जब सुन्नी मुसलमान, स्पेशली मेल होने का एक मुझे एक प्रिविलेज है, मुझे एक एडवांटेज है, मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ, मुझे शायद कोई ये लेबल नहीं करेगा कि ये इंडिया का एजेंट है या यहूदी एजेंट है या अहमदियों का एजेंट है या एशिया एजेंट है। मैं, अगर मैं शिया होता या मैं अहमदी होता तो शायद हिस्ट्री उसमें फ़र्क होती। एज अ राइटर, एज अ रिसर्चर, आपके हर शख्स के अपने एक कुछ बायसेस होते हैं, कुछ प्रेजुडिसेस होते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप कभी उस बायसेस से अलग नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शिव की तलाश कर रहा हूँ या मैं नानक के साथ नानक की जर्नी ट्रेस कर रहा हूँ, तो मेरा एक जो सुन्नी एक जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल मेरा हिस्सा है। और अगर ये किताब फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदू लड़का पाकिस्तान से देखता है तो उसका एक बड़ा डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी। जहाँ तक बात है कि शिवा की तलाश, तो वो मेरी किताब का टाइटल है, आपको पता ही है, इन सर्च ऑफ शिवा, तो वो असल में मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि वो शिव की तलाश है, असल में वो एक किताब है अबाउट दीज पर्टिकुलर इडियोसिंक्रेटिक मुस्लिम सूफी श्राइन्स। तो उसमें से कुछ श्राइन ऐसे हैं जहाँ पे फैलिक ऑफरिंग्स दी जाती हैं, कुछ श्राइन्स ऐसे हैं जहाँ पे डॉग्स या काउस को अभी भी लोग सेक्रेट कंसिडर करते हैं और मन्नत आके मांगते हैं। तो उसमें जब मैंने उन श्राइन्स को मैं कलेक्शन कर रहा था, तो एक कॉमन थीम सब में निकलती है कि ये हमारी इंडिजिनस रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो जिनका अब मॉडर्न पाकिस्तान में शक्ल तब्दील कर दी गई है, एक रीपैकेज कर दिया गया है उनको ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाने के लिए। उसी तरह शिव जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सिंबल लगता है, क्योंकि वो भी हमारा इंडिजिनस इंडस वैली का एक डाइटी है। देन एक सेक्रेट डॉग्स के ऊपर मैं आर्टिकल चैप्टर कर रहा था, तो शिव का एक श्राइन है कश्मीर में जिसपे शिव की राइड है डॉग, वहाँ भी उधर भी मंदिर में लोग आके शिव के डॉग्स को एक ब्लेसिंग के तौर पे उनको खाना खिलाते हैं। तो वेरी सिमिलर प्रैक्टिसेस,
मतलब उस मंदिर में शिव कुत्ते की सवारी करते हैं।
जी जी, शिव की एक इंकार्नेशन है, मेरे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा, पर वो शिव की एक इंकार्नेशन जो कि जिनकी सवारी एक डॉग है।
ये कितनी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा मंदिर है, कोई ऐसी श्राइन है जहां गाय को पाक माना जाता है, और कोई ऐसी जगह है जहां कुत्ते को शिव की सवारी के रूप में पूजा जाता है, और वो सदियों से है। तो वो जो पाकिस्तान है उसको तो हम लोग जानते ही नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है?
जी, ये देखिए, दोनों पाकिस्तान है। पाकिस्तान कोई भी मुल्क जो है वो इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। हर मुल्क के अंदर एक इस तरह की एक्सट्रीम्स होती हैं। बहुत से पाकिस्तानी इस पाकिस्तान को नहीं जानते, स्पेशली वो पाकिस्तानी जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन है। मैं क्योंकि एक शहर में रहता हूँ, एक अर्बन मिडिल क्लास एक एनवायरनमेंट के अंदर, लोगों को नहीं एक परसेप्शन होता, आपको कुछ निकलना पड़ता है रूरल एरियाज के अंदर, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव, तो वहाँ पे कहीं नूक एंड कॉर्नर के अंदर इस तरह की श्राइन्स जो है वो जिनको आमतौर पे लोग यहाँ पे जाहिल कहते हैं, वहां पे इस तरह की श्राइन्स एग्जिस्ट करती हैं। तो एक तरफ वो है, कुछ जो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी थी कि मैंने कि बहुत से 5-6 टेम्पल मैंने ऐसे देखे थे जहाँ पे लोगों ने उसको मदरसा बना लिया, और वो मदरसा उसको मैंने उस स्टोरी को इस तरह देखा कि ये रीअप्रोप्रिएशन ऑफ रिलीजियस स्पेस है, आई डोंट सी इट एज डिसेक्रेशन। क्योंकि बहुत से मंदिर ऐसे भी हैं जो तबाह कर दिए गए, जहाँ पे जानवर अभी बंधे हुए हैं, तो उनसे बेहतर यही है कि आप वहाँ पे मदरसा बना के आप वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएं। इंटरेस्टिंग बात है कि 92 में जब बाबरी मस्जिद पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों मंदिर जो है वो गिराए गए, बट उस कुंज 5-6 जो मंदिर थे उनके मदरसों के बच्चों ने उस टेम्पल को बचाया। उन्होंने टेम्पल को नहीं बचाया, उन्होंने अपने मदरसों को बचाया, पर मुझे वो एक बड़ी पॉजिटिव स्टोरी लगी थी। बट हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स एक बहुत उसकी भी लंबी स्टोरी है ऑफ हिंदूज बीइंग प्रोसिक्यूटेड इन द कंट्री, अबाउट टेम्पल्स बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो ये हर चीज़ है, आपको हर चीज़ जब आप एक सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो उसमें आपको नजर आती है कि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी हैं, उसके अंदर हर ये अजीब ऑपोजिट थिंग्स सर्वाइव टुगेदर।
जब आप नानक को खोजने निकलते हैं, और मैं अपने श्रोताओं को बताऊं कि नानक पर हर इंसान ने किताब लिखी है, और उन्होंने नानक के चेले जो भाई मर्दाना था उसकी तरह वॉक किया है उन्हीं रास्तों पर जहां जहां नानक चले, और वो भाई मर्दाना कहते हैं खुद को और वॉक करते हैं उसी जगह, उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए आप।
जी, नानक की जर्नी तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये फॉर सम रीजन एक मुझे फैसिनेशन थी बहुत शुरू में नानक से, शायद एक पंजाबी आइडेंटिटी का एक एहसास था, और नानक जो है वो पाकिस्तान पंजाबी आइडेंटिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन्होंने लैंग्वेज पंजाबी लैंग्वेज के लिए बहुत काम किया, ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर पंजाबी पोइट्स। फिर नानक के सारे गुरुद्वारे, 135 गुरुद्वारे पाकिस्तान में हैं, मेजोरिटी लाइफ उन्होंने यहाँ पे गुजारा, तो जब मैं उन जगह पर जाता था तो आई कुड एक्चुअली इट वाज अ वेरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फॉर मी, जहाँ पे मुझे एहसास होता था कि नानक जो है वो मेरे साथ चल रहे हैं। बट
लेकिन ये बताइए कि आपने इस जमीन के इतिहास को, जमीन का जो एक टुकड़ा है जिसको भारतीय महाद्वीप कहा जाता है, इसके इतिहास को तब से देखा है जब ये टुकड़ा, इसकी कोई अपनी पहचान भी नहीं थी, उससे भी पुरानी पहचान थी, और उसके बाद 1947 में टू नेशन थ्योरी आ जाती है, जो इस आधार पर है कि ये जो दो कौमें हैं ये एक दूसरे से बहुत अलग हैं, इसलिए इनको अलग हो जाना चाहिए। तो उस इतिहास की नजरिए से आप टू नेशन थ्योरी को कैसे देखते हैं, और हाँ अगला सवाल मैं इसके बाद पूछूंगा।
टू नेशन थ्योरी आई थिंक जिस तरह अब हम अंडरस्टैंड करते हैं पॉपुलरली पाकिस्तान में, जिस तरह शायद मैंने ग्रोइंग अप स्कूल में जो आप पढ़ते हैं उसमें से अंडरस्टैंड किया, वो यही था जो आप कह रहे हैं कि आप दो, ये जो दो कौमें हैं ये इकट्ठे नहीं रह सकती और इसलिए उनको जुदा हो जाना चाहिए। पर अगर आप इस हवाले से देखें तो आप अगर इवन मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने ये थ्योरी दी 11 अगस्त को पाकिस्तान बनने से कुछ दिन पहले, वो ये डिबेट कर ये स्पीच करते हैं जिसको लिबरल काफी इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, कि हिंदू मुसलमान अब पाकिस्तान में इकट्ठे रह सकते हैं और ये दोनों दे विल सीज टू बी रिलीजियस आइडेंटिटीज एंड दे विल बिकम पाकिस्तानी। सो इन दैट सेंस जिन्ना हिमसेल्फ इज क्रिटिसाइजिंग हिज ओन थ्योरी। इसकी जो कुछ एक अलग इंटरप्रिटेशन है, मैंने शायद जिन्ना की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, पार्टीशन की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, पर मुख्तलिफ जो इंटरप्रिटेशन है वो ये कहा जाता है कि जिन्ना साहब जब इसकी बात कर रहे थे वो एक कल्चरल सेंस में बात नहीं कर रहे थे, वो एक पॉलिटिकल सेंस में बात कर रहे थे, आपकी इलेक्टोरेट के हवाले से बात कर रहे थे कि आप इन दोनों को आप एज डिफरेंट नेशंस कंसिडर करें और इन दोनों को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दें। तो शायद उस वजह से डिपेंड करता है कि आप टू नेशन थ्योरी को प्रोसीड कैसे करते हैं, पर ये आपकी बात ठीक है कि प्रॉपरली जब हम टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, इवन इंडिया के अंदर, इवन बांग्लादेश के अंदर, जब हम बात करते हैं तो हम उसको एक कल्चरल तौर पर उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कल्चर इनके कंपैटिबल नहीं है, जो कि बिल्कुल एक आई थिंक इट डजंट मेक एनी सेंस। इवन अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो हम दोनों बड़े आराम से एक दूसरे को समझ रहे हैं, और मैं उर्दू बोल रहा हूँ और आप हिंदी बोल रहे हैं, तो उस कल्चरली तो मुझे नहीं लगता कि कोई कोई दम है इस थ्योरी में।
वो जो हमारे कल्चरल रूट्स हैं वो क्योंकि इतने एक जैसे हैं और हिस्ट्री तो एक ही है हमारी, तो क्या ऐसा होगा कभी कि जो एक जनरेशन ऐसी होगी जो इस बात को समझेगी कि नहीं हम एक ही हैं, लिहाजा इस बाउंड्री की, इस तकसीम की जरूरत नहीं है और एक मुल्क हुआ जा सकता है।
Even with the rise of extremism in Islamic extremism in Pakistan and rise of Hindu extremism in India, I don't think even in the long run Indians would want that as well. वो यही आइडिया होगा कि यार एक्सट्रीमिज्म है, आप सारे फंडामेंटलिस्ट हैं, उनको वहां पर रहने थे। बट जो चीज हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप एक अपनी मुल्क की आइडेंटिटी रखें, बट आप जैसे यूरोपियन यूनियन में हैं कि आप वीजाज खत्म कर दें, आप इन लोगों को मिल लेते हैं, अभी भी डिवाइडेड फैमिलीज हैं दोनों तरफ, बल्कि तीनों तरफ, इवन बांग्लादेश में अगर आप देखें वहां भी डिवाइडेड फैमिलीज हैं, आप वीजा खोल दें लोगों के लिए, लोग जॉब्स कर सकें, लोग मिल सकें, लोग देख सकें एक दूसरे को, पिलग्रिमेज कर सकें, तो उस तरह का एक आई थिंक उस हवाले से हम शायद बॉर्डर को इरेलीवेंट कर सकते हैं।
आमीन के साथ मैं ये बातचीत खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद है ऐसा हो कि हारून जब चाहे अमृतसर हुआ है और विवेक जब चाहे लाहौर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर।
SBS हिंदी, हमारी कहानियां फेसबुक पर।